أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ لیکچر نمبر 24 اعمال کا ریکارڈ، اس میں ہم پڑھ رہے تھے تو نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام ہم نے پڑھا، اور یہ بتایا گیا کہ جب بندہ ایک طرف اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے ذہن سے ارتباط حاصل کر لیتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، لنکڈ اپ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوق کے لیے ویسی ممتا محسوس کرتا ہے جیسی اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک ماں کی محبت بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اپنی مخلوق کو خوش دیکھ کر اور اس کی مخلوق کو خوش کرنے والوں کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی ہوگی. اس نقطے کو سمجھیں. یہ اصل میں میں نے کل خدمت کے ترجمے میں عرض کیا کہ اصل میں خدمت سے کیا مراد ہے. خدمت سے مراد ہے دوسرے کو اس کی گروتھ میں مدد دینا. ممتا کیا کرتی ہے؟ بچے کو گرو کراتی ہے. گروتھ کا، نشو نما کا، بڑھوتری کا یہ جو سارا نظام ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کیونکہ اللہ خود کر رہا ہے. اس چیز کو تصوف میں خدمت کہا گیا. ہم لوگوں نے پیر دبانے سے خدمت مانا، اور کئی ہمارے بزرگوں نے یہ خدمت کروائی ہے، کرواتے ہیں، چلیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ. تو ہم آگے آج پڑھتے ہیں جی کہ یہ جب دونوں کیفیتیں، یعنی ایک طرف وہ بندہ خود کو اللہ سے وابستہ محسوس کرتا ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق کی گروتھ میں مدد کرتا ہے. مخلوق کی مدد کرتا اللہ کی نہیں، اللہ تو مدد سے بہت اوپر ہے. تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی. اس کیفیت میں رہنے والے بندے کے لیے تصوف میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی تھی جس کو جمع کہا گیا. پھر اس سے اوپر ایک کیفیت ہے، اسے جمع الجمع کہتے ہیں، وہ بعد میں اگر انہوں نے کہیں پڑھایا یا اس میں تذکر آیا تو وہ عرض کر دیں گے. لیکن یہ جمع کا صیغہ، جمع یعنی بندہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ارتباط میں آ جائے، اس کو سلیس اردو میں یوں کہا. تو ہم آج پڑھ رہے ہیں جی 209 صفحے پہ، پیج نمبر ہے 209، آخری پیسج ہے. اب یہاں سے اس چیپٹر میں ایک نقطہ وحدانی کا ذکر ہے. اب یہ نقطہ وحدانی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی نقطہ ہے جہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جہاں ساری چیزیں. وحدانیت کا جو اصل نقطہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو پوری کائنات نقطہ وحدانی میں بند ہے. تو کائنات کہاں بند ہے؟ اللہ کے ذہن میں. تو یہ پوری کائنات نقطہ وحدانی میں بند ہے، اسی نقطے کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سوت یا روشنیوں کے ذخیرے چھپے ہوئے. اسی نقطہ وحدانی میں روشنیاں جوش کھاتی اور ابلتی رہتی ہیں. انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. یہ سب تمثیلی اندازے بیان ہیں تاکہ ہمارے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن سکے. تصویر کس چیز کی؟ تصویر اس چیز کی کہ اللہ کی صفات، اللہ کا ذہن اللہ کی صفات کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. ایسے جیسے روشنیاں ابل رہی ہیں، جیسے پانی میں نیچے سے آنچ آئے تو پانی اوپر کو اٹھتا ہے، ابلتا ہے، اس طرح سے یہ روشنیاں اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے. تو کس طرح سے وہ روشنیاں اوپر سرفیس کی طرف زور کرتی ہیں. جب وہ سرفیس کی طرف زور کرتی ہیں تو کس طرح چیزیں وجود میں آتی ہیں، اشیاء، افراد، انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. اسی تغیر سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہو رہے ہیں. یعنی یہ روشنیاں ابل رہی ہیں، کائنات میں تغیر یعنی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، چینج آتا ہے. پھر یہ چینج جو ہے یہ کلمینیٹ ہوتا ہے کس طرح کہ ستارے بنتے ہیں، ستاروں کے ساتھ ان کے گرد گردش کرنے والے سیارے بنتے ہیں، اور پھر وہ تعداد لاشمار ہے، لاشمار نظام اس طرح بن رہے ہیں. جتنی تعداد متغیر ہوتی ہے یعنی جتنا زیادہ تغیر آتا ہے اتنی ہی تعداد میں ستارے اور سیارے ٹوٹتے مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں. یہ ٹوٹنے والے ستارے قائم رہنے والے سیاروں کے لیے سٹور کا کام کرتے ہیں، سٹور ہاؤس. یعنی جب ستارہ ٹوٹتا ہے یا وہ سپر نووا بن کے پھٹتا ہے تو اس کی انرجی سیاروں کو فیڈ کرتی ہے. ایک طرف نقطہ وحدانی سے ابلنے والی روشنیاں ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کرتی ہے، تو دوسری طرف نقطہ وحدانی سے نکلنے والی روشنیاں ایسے ستارے بناتی ہیں جو پورے پورے سیاروں پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ایسے ستارے بناتی ہیں جن کے ساتھ ان کے سیارے جو ستارے کے گرد، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد گھومنے والے یہ 9 سیارے جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے، اس طرح ایک ایک ستارے کے ساتھ پورے پورے، یا جیسے آپ کہیں کہ ایک ایٹم جو ہے اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد پھر الیکٹرونز کے کئی آربٹس ہوتے ہیں، تو یہ سارا اس طرح سے پورا نظام چل رہا ہے اور سارا روشنیوں پہ بیسڈ ہے، لہروں پہ بیسڈ ہے. یہی وہ روشنیاں ہیں جن سے کائنات کو وسعت مل رہی ہے اور کائنات نئی نئی طرزوں میں پھیل رہی ہے. یہ جو رنگ برنگے یعنی ویرائٹی، گہرائیوں میں سمٹنا، یہ مخفی حرکات ہیں، اور روشنیوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا یہ مثبت حرکات ہیں. یہ منفی اس لیے کہا کہ وہ لہریں آپس میں مدغم ہو کے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ مخفی کہلا رہی ہیں. اور روشنیوں کا پھیلاؤ اور منتشر ہونا یہ مثبت حرکات ہیں یعنی پازیٹو، یعنی وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، یعنی ان کا ڈسپلے جو ہے وہ ان کو پازیٹیوٹی دے رہا ہے. کیونکہ وہ جب کوئی حرکت مخفی ہو تو اس کو منفی حرکت بھی کہا جاتا ہے یا مخفی حرکت کہا جا رہا ہے، اور جب یہ وہ ڈسپلے پہ آ جائے یعنی وہ حرکت جو ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلے اور اس کا کوئی ڈسپلے ہو، کوئی مینیفیسٹیشن ہو، تو یہ مثبت حرکت ہے. اب حرکت کی یہی دو حالتیں ہیں، ان کے دوسرے دو نام ہیں، وہ ہیں کشش اور گریز. یعنی ایک طرف یہ کشش کرتی ہیں اور دوسری طرف روشنیوں کا مزاج ہے، ایک طرف کشش کر رہی ہیں جیسے سورج سے نکلنے والی روشنی سورج سے گریز کر رہی ہے تو زمین کی کشش کی طرف کشش کر رہی ہے، یا زمین کی کشش اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اسی طرح جب وہ روشنی کسی سطح پر پڑتی ہے تو سطح تک اس کی کشش چل رہی ہے، لیکن سطح پہ پڑ کے جب وہ منعکس ہو رہی ہے تو وہ وہاں سے گریز کر رہی ہے، اور جس طرف جا کے وہ منعکس ہو رہی ہے جس سطح پہ اس کے لیے وہ کشش بن رہی ہے. تو یہ ہے مخفی اور مثبت، یا منفی اور مثبت، کشش اور گریز. تو نقطہ وحدانی، نقطہ وحدانی یہ اس کا ذیلی عنوان ہے. उसकी थोड़ी सी तशरीह, थोड़ा सा तारुफ या एक तमसीली अंदाज में एक बात बयान हुई। अब फरमा रहे हैं कि कायनात ऐसी रोशनी है, पूरी कायनात एक ऐसी रोशनी है जो नजूल और सऊद के साथ लहरों की हरकत पर कायम है। नजूल और सऊद यानी कि कहीं से वो नाजल हो रही है, कहीं वो डिस्प्ले होके वापस सऊद कर रही है। ये सारा रोशनियों का निजाम अगर हमारी फहम में आ जाए तो आप देखें कि जूं जूं आपकी सक्कत बढ़ेगी, दिमागी सलाहियत बढ़ेगी, तो हत्ता के एक वक्त आएगा कि आप इसका मुशाहिदा करने लगेंगे। कायनात ऐसी रोशनी है जो नजूल व सऊद के साथ लहरों की हरकत पर कायम है। ये मरकजी नुक्ता यानी नुक्ता वहदानी एक ऐसा नुक्ता है जो अनवार से मामूर है, यानी नुक्ते के अंदर अनवार है। अब ये लफ्ज नूर और रोशनी को हम पहले कई दफा वाजे कर चुके कि अनवार से मुराद है ख्याल और रोशनी से मुराद है तसव्वुर। तो ये रोशनियां असल में तसव्वुरात और ख्यालात को लेके चल रही हैं और उसके अंदर रोशनियां जोश खाती और उबलती रहती हैं, यानी तसव्वुरात बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते रहते हैं और उबलने के बाद रोशनियों का बिखरना ही कायनात है। यानी तसव्वुर जब मजहर बनने के लिए स्प्रेड होता है, बिखरता है, यहां पे मुंतशिर नहीं है बल्कि बिखरना, यानी जैसे बीज को किसान ऐसे स्कैटर करता है यानी फैला देता है, बिखेर देता है, ये वो बिखरना। रोशनी के बिखरने से कायनात के अंदर हर लम्हा लाशुमार निजाम तामीर होते रहते हैं। ये है सारा निजाम। अल्लाह के जहन से निकलने वाले उस मरकजी नुक्ते के अंदर से जो अनवार हैं वो रोशनियों की तरह जब उबलते हैं तो कायनात डिस्प्ले पे आ जाती है। अब इसकी मिसाल देखें। इसकी मिसाल हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं कि एक तालाब है, वही तालाब वाली मिसाल लेकिन अब थोड़ा पैराया है, बयान थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है। अब तालाब में एक फव्वारा है, तालाब में पानी भी है फव्वारा भी है। फव्वारा जब उबलता है यानी कोई फोर्स है जो पानी को जब फव्वारे के अंदर से बाहर को फेंकती है, तो फव्वारा जब उबलता है तो तालाब में वापस गिरता है। उसका पानी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, फिर वहां से पलट के नीचे तालाब में गिरता है और दायरे बनते हैं। ये मंजर वाजे करें जहन में। फव्वारा जब उबलता है तो तालाब में गिरता है, गिरने से तालाब में बेशुमार दायरे बनते हैं। ये बेशुमार दायरे सितारे सैयारे और कहकशानी निजाम है जो हर आन बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि तालाब के अंदर मौजूद दायरे अपनी बिसात में रहते हुए सफर करने के बाद मिट जाते हैं। अपनी बिसात में रहते हुए, अब लफ्ज बिसात बेस यानी तालाब की सतह, ये बिसात है। अपनी बिसात में रहते हुए वो दायरे जो हैं वो नहीं उछलते, वो एक सफर करते हैं और सफर करने के बाद मिट जाते हैं। जितनी तादाद में दायरे बनते हैं उतनी ही तादाद में दायरे फना हो जाते हैं, यानी लगातार फव्वारा चल रहा है, उसका पानी नीचे गिर रहा है, तो दायरे बन भी रहे हैं दायरे फना भी हो रहे हैं। यानी दायरों का फना होना इस बात की अलामत है कि मजीद दायरे बनेंगे, यानी दायरे मिट रहे हैं, इसका मतलब है कि नए दायरों के लिए जगह बन रही है। एंगल देखें जरा सोच का, इसको समझें। दायरों का फना होना इस बात की अलामत है कि दूसरे और दायरे बनेंगे। जब हम तालाब के अंदर देखते हैं तो यह भी नजर आता है कि कहीं दायरा छोटा कहीं बड़ा है। इसी हिसाब से हर दायरा कायनात का एक निजाम है। अब इसी मिसाल को उठा के वहां ऊपर नुक्ता वाहदानी से उबलने वाले फवारे और रोशनियों से बनने वाले निजाम को तसव्वुर करें तो ये मिसाल वहां लागू की गई है। इस कानून को बयान करने का मंशा यह है, कायनात हर वक्त तामीर हो रही है, कायनात हर वक्त फना हो रही है। जैसे जैसे दायरे फना हो रहे हैं इसी तरह नए दायरे बन रहे हैं। दायरों का बनना और मिटना उस पानी की वजह से है जो पानी फव्वारे से उबल रहा है। अब पानी सिफाते इलाहिया है, यानी पूरा तालाब जो है वो अल्लाह की सिफात का एक स्टोर हाउस है। उसमें एक फव्वारा है, ये भी अल्लाह की एक सिफत कारीगरी है कि वो किस तरह से सिफात में उबाल और उछाल पैदा करते हैं। अब ये फव्वारा जो है ये है नुक्ता वाहदानी की मिसाल, और तालाब कायनात है। तालाब के अंदर दायरों का बनना ये नजूली और सऊदी हरकत है, क्योंकि नजूल करते हैं तो दायरे किनारों की तरफ फैलते हैं और फिर वो वापस जब अपने मरकज की तरफ आते आते फना हो रहे हैं, तो ये सऊदी हरकत है। तो जिन रोशनियों पर कायनात तख्लीक हो रही है उसके दो रुख हैं। एक रुख रोशनियों की गहराई में सिमटने और हजूम करने पर मजबूर है। अब हजूम हमारे यहां उर्दू में इसका मतलब लिया जाता है एक जगह जमा होना, अरबी में हजूम यानी हमला कर दो, इकट्ठे होकर एक ही नुक्ते की तरफ बढ़ने को हजूम करना कहते हैं। तो रोशनियों के गहराई में सिमटने और हजूम करने पर मजबूर है, ये एक रुख है। दूसरा रुख रोशनियों के फैलने और मुंतशिर होने पर है, यानी एक रुख सिमटना और जमा होना और दूसरा फैलना और मुंतशिर होना। गहराइयों में सिमटना और हजूम करना ये मख्फी हरकत है। यानी देखें ना, तालाब के अंदर पानी इकट्ठा होता है तो फव्वारे के अंदर जाता है और फिर वो फव्वारे में से बाहर निकलता है और मुंतशिर हो जाता है। ये बड़ी छोटी सी मिसाल तालाब और फव्वारे की, पहले सिर्फ तालाब में कंकर मारने की मिसाल दी गई थी ताकि जहन में आ जाए कि अल्लाह की सिफात कैसे काम करती है, कैसे एक लहर पूरी नौ को और फिर उसके अफराद को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अब उस मिसाल में कंडीशन फव्वारे की करके बताया कि ये फव्वारा जो है ये नुक्ता वाहदानी की मिसाल है, क्योंकि यहां से वो जेटिंग प्रेशर आउट, यानी जेटिंग, जेट होता है ना किसी चीज को प्रेशर से एक फोकस नुक्ते से बाहर निकाला जा रहा है, तो उसको नुक्ता वाहदानी कहा। गहराइयों में सिमटना और हजूम करना ये मख्फी हरकत है, ये हमारे सामने नहीं है, लेकिन फैलना और मुंतशिर होना ये मुस्बत हरकत है। अब तालाब की इस मिसाल के पेशे नजर, यानी तालाब की इस मिसाल को सामने रखते हुए जरा गौर करें तो हम यूं कहेंगे कि कायनात में कशिश और गुरेज के करोड़ों हलके हैं। हलके मैंने लूप्स, हलके लूप्स बन रहे हैं यानी दायरे बन रहे हैं, या तो ये लूप्स हैं। इन हलकों या दायरों में हर हलका या दायरा अपनी एक मरकजियत रखता है। अब आप देखें कितनी बारीकी से समझाया जा रहा है और कितनी बारीक बीनी से, जिस बंदे को ये सारी बात देखे ना, आपको मुशाहिदा है तो वो एक मिसाल दे सकता है। किसी बात का अब उसको समझाने के लिए तो ज़ाहिर है हमारे पास किसी भी ज़बान में वो अल्फाज ही नहीं है, तो फिर ये मिसालें दी जाती हैं। तो अल्लाह भी कहता है दरबा मसलन, इनको मिसालों की चोट लगाओ, दरब ज़रब लगाओ, ज़रबुल मिसल इसी से। तो ये हर हलका या दायरा, जैसे तालाब में दायरा जो है उसकी एक मरकजियत है, यानी जहां पे बाहर से ऊपर से गिरने वाले पानी का कतरा गिरता है वहां पे भी एक दायरा बन रहा है, जहां पे पानी का पूरा प्याला भर पानी गिर रहा है वहां पे भी बड़ा दायरा बन रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ छोटे बड़े दायरे बन रहे हैं जी। जी 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 सॉरी, वो आवाज आ रही है अब आपको? हेलो अब आवाज आ रही है? मैंने कहा बस मेरी जान अब ये नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, क्या करूँ। या मैं अपनी इसको रीडिंग को पूरा करता हूं, अगर आवाज आए तो ठीक, वरना फिर वहां सुन लीजिएगा उसमें। तो ये जो तालाब की मिसाल थी इसके पेशे नजर एक बात कही जा रही है कि तालाब की मिसाल के पेशे नजर हम ये कहेंगे कि कायनात में कशिश और गुरेज के करोड़ा हलके हैं। हलके मैंने जी, इन हलकों या दायरों में हर हलका या दायरा अपनी एक मरकजियत रखता है, और इन तमाम दायरों की मरकजियत फवारे से वाबस्ता है। अब हर हरकत, हर हरकत उसका ताल्लुक सऊद से हो या नजूल से हो, नुक्ता वाहदानी की सिमत में मुतहरक है, यानी चाहे वो हरकत कशिश के जेरे असर हो या गुरेज के, उसका उसकी सिमत क्या है? नुक्ता वाहदानी यानी फवारक। नुक्ता वाहदानी से जो दायरे, चाहे वो कायनात के अफराद हो या कायनात में नोए हो, नुक्ता वहदानी से जो दायरे वजूद पा रहे हैं उनकी मरकजियत ऐसी अनदेखी शुआओं पर है जिन शुआओं को अल्लाह ने नूर कहा है। ये है ना कि अल्लाह नूर समावाते वलर, देखिए उस मिसाल को, तालाब की मिसाल को अल्लाह तबारक व ताला के मतलब शुआओं वाली बात को नूर के साथ कैसे कनेक्ट करके समझा रहे हैं कि तमाम दायरों की मरकजियत फवारे से वाबस्ता है, और हर हरकत चाहे उसका ताल्लुक सऊद से हो या नजूल से हो नुक्ता वाहदानी की सिमत में मुतारिक है। तो नुक्ता वाहदानी से जो दायरे ये कायनात के अफराद हों वजूद पा रहे हैं और उनकी मरकजियत ऐसी अनदेखी अनदेखी नजर ना आने वाली शुआओं पर कायम है जिन शुआओं को अल्लाह ने नूर कहा है। और ये सिलसिला अजल से अबद तक कायम है और जारी रहेगा। जब सालिक सालिक यानी राह सलूक पे चलने वाला बंदा जिसके रवैये ठीक हो चुके हों मनफी और मुस्बत हरकात को समझ लेता है तो वो छह शऊरों से वाकिफ हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सातवें शऊर का इंकशाफ होता है। हासिले कलाम यह है कि सिफत रब्बानियत से वकूफ के लिए सात शऊरों को मुतहर्रक करना जरूरी है। अब ये छह शऊर क्या हैं? इनकी बात करने से पहले ही मैं आखिरी जुमला, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को छह रोज में पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ। इसमें ये सातों दर्जे आ गए, छह रोज और फिर अर्श पर कायम होना। अब अगर आपको वो चार्ट याद हो जिसमें शख्स अकबर और शख्स असगर का बयान हुआ था, यानी सबसे ऊपर शख्स अकबर है फिर शख्स असगर जो है फिर नीचे शख्स असगर के तहत तीन आलम खफीफ थे यानी मलाए आला मलाइका और जिन्नात, और फिर तीन आलम शदीद थे यानी नबातात जमादात और हैवानात, जमादात नबातात और हैवानात। तो ये जो दर्जे हैं छह शऊरों के, क्या के पहले आप जमादात से वाकिफ हों, नबातात से वाकिफ हों, फिर हैवानात से वाकिफ हों, फिर ये तीन तीसरे दर्जे का शऊर हो गया, फिर आप जिन्नात से वाकिफ हों, फिर फरिश्तों से वाकिफ हों, फिर छठे पे मलाए आला से वाकिफ हों, फिर जब आप खुद अपने आप को बतौर खलीफातुल अर्द शख्स असगर के तौर पर देख लेते हैं, ये है सातवां शऊर। ये सबे समावात का है अल्लाह ने, सबे समावात, ये सात दर्जे हैं शऊर के, छह दिन हैं। इनकी मजीद तशरी आएगी। देखिए कुल सात चीजें हैं जिन्हें सबे मिनल मिसानी का है। ये सात चीजें क्या हैं? पहला है जात, एक वाहिद, इसी को नुक्ता वादानी कहें, इसी को नुक्ता जात कहें, इसी को अल्लाह कहें, ये सारा एक वाहिद, ये है वहदानियत का पूरा चैप्टर। फिर आगे तखलीक का निजाम है दो, यानी जोड़े जोड़े जोड़े, जमानो मकान से लेके नर्मादा तक, पानी और प्यास से लेके अंधेरे और रोशनी तक, ये सारे जोड़े जोड़े जोड़े। तीन जो हैं ये रूह के काम करने के दर्जे हैं। पहला दर्जा इल्म का है, दूसरा दर्जा अमल फिक्र का है, और तीसरा दर्जा अमल का है। इल्म, फिक्र और अमल, ये तीन चीजें जो बतौर रूह काम कर रही है, ये हैं रूह के तीन दर्जे। फिर आगे चार जहते हैं, उनका नाम है वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास। फिर पांच हिस्सियात हैं, छह सबे सित्तते अय्याम, ये छह दायरे क्या हैं, ये छह चीजें क्या हैं, इसका बयान आगे दोबारा दोबारा आएगा। यानी और सातवां यानी के सात दर्जे हैं शऊर के। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत वदियत कर दी है कि इंसान बयक वक्त छह शऊरों से काम ले सकता है। देखें जरा, यानी छह के छह शऊर, मलाए आला से लेके जमादात तक सबको जान सकता है। तो ये छह शऊर, छह शऊरों का तस्करा आ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह छुपा देता है रात से दिन को ऐसे तौर पर कि वो रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है। यानी मफहूम यह है कि दिन और रात हवास की दो किस्में हैं। रात और दिन के हवास यकसां तौर पर काम करते हैं। फर्क यह है कि दिन में हवास की रफ्तार कम हो जाती है और रात में हवास की रफ्तार बढ़ ज्यादा हो जाती है। ये है सारा निजाम के हवास हिसियात जो हैं इनकी रफ्तारें जो हैं उसका निजाम है। अगर हम अपने हवास और हिसियात की रफ्तारों को बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, हम इनसे बेहतर तौर पे वाकिफ और आशना हो सकेंगे। हवास की कम रफ्तारी से आदमी शौरी तौर पर कम सफर करता है। यानी देखे ना, सीधी सी बात है, हवास की रफ्तार कम होगी तो क्या होगा, शौरी तौर पर सफर कम करेगा, और अगर तेज रफ्तारी होगी तो हवास की रफ्तार में तेजी होगी तो उसके उसका सफर ज्यादा होगा, वो ज्यादा चीजों को या ज्यादा फासले तक की चीजों को ग्रास्प कर सकेगा। दिन के हवास में चूंकि रफ्तार कम होती है इसलिए स्पेस का गलबा हो जाता है। रात के हवास में दिन के हवास के मुकाबले में रफ्तार बढ़ जाती है इसलिए स्पेस की ग्रिफ टूट जाती है। लेकिन स्पेस से आजाद होने के बावजूद फर्द स्पेस में मौजूद रहता है। अब ये मसला इस तरह हल होता है कि स्पेस में तगैयर वाक्या हो जाता है। एक आदमी बेदारी में जमीन पर चल रहा है, वही आदमी ख्वाब की हालत में स्पेस से आजाद होकर किसी दूसरे सैयारे में चल फिर रहा है। ये चलना फिरना इस बात की अलामत है कि जमीन की स्पेस हर सैयारे में मौजूद है। स्पेस एक है और टाइम बेशुमार है। स्पेस एक ही है। जन्नत में भी आप यही फल खा रहे हैं जो आप दुनिया में खा रहे हैं, स्पेस एक ही है। वहां पे भी सेब का साइज यही होगा जो यहां है, लेकिन वक्त की रफ्तारें, वक्त के जोन हर जगह अलग हैं। बाकी इंशाल्लाह कल ठीक हो गया जी।